क्रांतिकायः पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांतिकायः पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। गहनतम की निशा बीती भोर आया भाग्य लेकर, दे रही संदेश जग को प्रकृति भी करवट बदल कर। छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, छोड़ तंद्रा उठ पड़ो अब, कर्म का संदेश लेकर, कर्म का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। सूर्य की अरुणिम विभाले किरण मन उतरा नयन में, साधना का हो बसेरा गंध बन विचरो पवन में। मातृभू का भार हर लो, मातृभू का भार हर लो, प्रेम का संदेश देकर, प्रेम का संदेश देकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया ज्ञान का संदेश लेकर, ज्ञान का संदेश लेकर। क्रांति का यह पर्व आया।
मार्ग कठिन तो है, मार्ग के कदम कदम पर फलक लगा हुआ है सहज राजयोग, और नीचे पत्थर ही पत्थर, कांटे ही कांटे। किसी ने कहा है, अगर पानी के ऊपर से गुजरना है तो पत्थरों पर पाँव रख रख कर गुजरो, पानी से गुजरना है तो कहाँ पाँव रखो, पत्थरों पर। ये पत्थरों पर पाँव रखना ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। और पत्थर अर्थात विघ्न, और पत्थर अर्थात समस्याएं, और पत्थर अर्थात मुश्किलें, और पत्थर अर्थात चुनौतियाँ, चैलेंजेस। ये पत्थर ही तो है जिस पर पैर रखकर आगे बढ़ना है। थक कर बैठ गए क्यों भाई, यहाँ क्यों बैठ गए ये सोचकर कि ये इतने सारे पत्थर, ये पत्थर दिए ही गए हैं किस लिए, ताकि उस पर पाँव रखकर तुम आगे बढ़ो। अगर ये पत्थर ना होते तो आगे कैसे बढ़ते। विघ्न, मुश्किलें, समस्याएं, सब कुछ होगा। हम कौन हैं, जब भगवान धरती पर आता है छप्पर फाड़ कर मुसीबतें भी आती है साथ, वो भी छप्पर फाड़ कर आता है परम धाम से, और उसके साथ साथ वर्षा होती है किसकी, विघ्नों की। वो चाहता तो उसके कार्य में सारे विघ्न हटा देता, परंतु ऐसा उसने नहीं किया। विघ्न ही विघ्न, विघ्न ही विघ्न, विघ्न ही विघ्न। ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के, और ऊपर वाला जब भी आता है उसके साथ विघ्न भी आते हैं छप्पर फाड़ कर। विघ्न के फायदे क्या है और विघ्नों से कैसे पार हो, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। सात फायदे और सात विधियां विघ्नों से पार जाने की, परंतु उसके पहले इतिहास। इतिहास की एक बात छूट गई थी जो आज लेंगे। पांडव भवन का निर्माण में भी विघ्न आए। कौन कौन से? 1960 में चलते हैं थोड़ा पीछे, फिर 1965 के आगे आएंगे। 1960 बाबा ने विश्व किशोर भाऊ से कहा कि पोखरान हाउस जो है 1958 में भाड़े से लिया हुआ है, उसको क्या करो अब खरीद लो। और मालिक कौन था? एक ठाकुर। उसको जाके मोल भाव करो और उससे वो खरीद लो। तो भाऊ गए, उससे बात की और फाइनल डील हुई 18,000। 18,000 में खरीदने की बात हो गई, लिखित भी हो गया, उसने साइन भी कर दी। बाद में माउंट आबू के जो दूसरे नामी ग्रामी व्यापारी गण थे, वो उस मालिक से, उस ठाकुर से मिले और उनसे कहा कि तुमने ये बहुत घाटे का सौदा किया है, इतनी बड़ी ज़मीन पोखरान हाउस की 18,000 में दे रहे हो, कम से कम 25,000 लगाओ। तो उसने बाद में कहा, नहीं, ये मेरे घाटे का सौदा है, मुझे 25,000 चाहिए। विघ्न या आबू में ही एक सरदार जी थे उस समय, अभी तो नहीं है, जो बड़े सहयोगी थे, बाबा के स्नेही थे, भाऊ के, नेवांद सिंह, सरदार नेवांद सिंह जी, इनका नाम लिखा है बुक में। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता नहीं करो, क्योंकि डील पहले ही हो गई है और उसने साइन कर दी है, तो हम कोर्ट में जाते हैं, केस करेंगे सिरोही, क्योंकि उसने पहले साइन की थी, अब मुकर गया। अभी वो कहता है मैं रजिस्ट्री नहीं करूँगा, परंतु पहले तो डील की थी और साइन भी है। और वो कहते हैं सरदार जी कि मेरे वकील हैं वहाँ पर जो मुझे जानते हैं, इसलिए पैसे नहीं लेंगे। बाबा ने कहा ठीक है। तो सिरोही जाना हुआ, एक साल तक आना जाना कई बार, बस से जाना, बस से आना, तीन लोग मिलके जाते थे और तीन लोग मिलके वहाँ रहते थे। वहाँ एक राजमाता धर्मशाला है सिरोही में, वहाँ दो तीन दिन रुकना, कोर्ट में जाना, कोर्ट में आना, कोर्ट में जाना, कोर्ट में आना, और फिर वापस आ जाना। पर वो जो कोर्ट था और वो जो जज था, वो ये जो मालिक था उसका रिश्तेदार था। तो वो टालता गया। पर ये तीन लोग जाते थे वहाँ पे, एक तो नेवान सरदार जी, भाऊ और विश्वरतन दादा। विश्वरतन दादा की ड्यूटी है भोजन बनाने की, तो उनका एक किट है, उस किट में सब कुछ है, चावल है, अनाज है, मसाले है, स्टोव है, तवा है, बेलन और चकना, वो सब कुछ है, वो सब सामान लेके जाते थे। जब ये दो लोग कोर्ट जाते थे तो उनका काम रहता था भोजन तैयार रखना, तो उस किट में सब कुछ रेडी। कुमारों के लिए अच्छा प्लानिंग है, एक किट भोजन की, जहाँ जाओ वहाँ साथ में लेकर, किसी से मांगने की, पूछने की, रिक्वेस्ट करने की झंझट खत्म। तो ये सब कुछ साथ में, पोर्टेबल किचन, मोबाइल किचन लेकर घूमते थे। तो कितनी बार गए और कितनी बार आए, कितनी बार गए और कितनी बार आए, वो जो जज था वो किसी ना किसी रीति से टाल देता था। और फिर आखिरकार उस जज ने कहा, तुम एक काम करो, ये जो मालिक है ना बहुत लालची आदमी है, क्यों नहीं तुम उससे थोड़ा सा बैठ के थोड़ा सा डील कर लो और थोड़े पैसे बढ़ा दो और खरीद लो, अपने आपस में निपटा लो, और यहाँ आपका कितना खर्चा जाता है, यहाँ से बस से सिरोही जाना, भोजन, धर्मशाला, दो तीन दिन रुकना, कोर्ट के चक्कर। तो बाबा को बताया जाता है, बाबा कहते ठीक है, जाओ तुरंत जाके बात करो मालिक से, क्योंकि हमें बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करना है, सीमेंट के भाव बढ़ रहे हैं, तुरंत जाओ, क्योंकि दो टेनिस कोर्ट थे पोखरान हाउस में, एक तो जहाँ अभी हिस्ट्री हॉल है, जो हमने देखा कब बना, 62 में, 58 में आ गए, 60 में ये बात चल रही है खरीदने की। तो बाबा कहते हैं जाओ जल्दी, और दूसरे जो टेनिस कोर्ट था वहाँ क्या बना है, शांति स्तंभ वाला, और ट्रेनिंग उसके आगे भी बनाना है ऊपर, तो ज़मीन हमारी अपनी चाहिए। तो बाबा ने कहा जाओ उसके साथ, तो उसके पास गए और फिर डील करते करते फाइनल हुई 21,000। तो पांडव भवन कितने रुपए में खरीदा गया? 21,000 प्लस, एक साल में सिरोही का खर्चा हुआ 3 से 4 हजार, तो टोटल खर्चा कितना हुआ पांडव भवन का? 25 हजार। तो पांडव भवन जो खरीदा गया 1960 में खरीदा गया, कितने रुपए में? 25 हजार। अभी कितने होंगे उसके? करोड़ों में होंगे। नहीं, वो तो है, बट सांसारिक दृष्टि से इसमें भी विघ्न था। हर छोटी छोटी चीज कितना चक्कर लगाना पड़ा, सिरोही जाना आना, सिरोही जाना आना। इतना आसान है? बूढ़ी दादी एक ही दिन में माउंट आबू से आबू रोड कितने बार चक्कर लगाती थी? 5 से 6 बार कभी कभी। जाना आना, जाना आना, एक ही दिन में। कितना बड़ा त्याग है, कितनी बड़ी तपस्या है ये। हमें अगर कहीं सुबह जाके आए और शाम को कहे फिर जाओ, कैसा रास्ता होगा, थक्के थुक्के। तो ये भी एक विघ्न था। तो पांडव भवन 25 हजार टोटल लगभग में लिया गया। अभी हम आते हैं आगे। तो कल हमने देखा मम्मा का महाप्रयाण, सारी रात भर बैठे रहे। बाबा ने कहा योग करते रहो, हो सकता है मम्मा वापस आ जाए, मम्मा हो सकता है वापस आ जाए। और सबको लगा भी कि मम्मा आ सकती है, और बैठ गए हिस्ट्री हॉल में रात भर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इस धरती पर आ जा रहे। भोग संदेश नंबर 5। भोग संदेश आए, हिंदी की जो किताब है जगदम्बा और इंग्लिश की जो किताब है ट्रांसलेशन जगदम्बा, उसमें डेट्स में अंतर है। जो इंग्लिश की बुक है उसमें शायद करेक्ट है, क्योंकि मम्मा ने शरीर छोड़ा 24 जून को दोपहर को 4 सवा 4 के बीच। रमेश भाई लिखते हैं कि हम लोग निर्वेर भाई, प्रकाशमणि दादी और एक सीता माता रात को निकल गए गुजरात मेल से, और हम लोग पहुँचे सुबह 8 बजे डायरेक्ट फ्लाइट से, 6 बजे की फ्लाइट, 8 बजे पहुँचे। और हमको बूढ़ी दादी ने कहा कि जल्दी जाओ ऊपर, सामान यही छोड़ो, जाओ जल्दी, उधर इंतज़ार कर रहे, सीधा शमशान घाट में पहुँचना क्योंकि लेट हो रहा है। अर्थात भोग संदेश उसी रात को आया होगा, पहला 25th को, जो शाम को गुलजार दादी के द्वारा एक हफ्ते भर संदेश आए। तो पहला भोग संदेश आया होगा 25 को ही। हिंदी की जो किताब है उसमें लिखा है पहला भोग संदेश की डेट लिखी है 26, सारी आज्ञा की लिखी है, परंतु हमें लगता है इंग्लिश किताब में जो लिखा हुआ है फर्स्ट भोग संदेश ऑन 25 जून, नॉट ऑन 26। तो इंग्लिश बुक में जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है जगदम्बा की, 5th नंबर का भोग संदेश है, उसमें है मम्मा ने कहा, जब गुलजार दादी मम्मा के पास वतन में गई तो मम्मा ने कहा, पूछा कि आपको बच्चे बुला रहे थे नीचे तो आपने क्या किया? मम्मा ने कहा मैं 2 बार नीचे आई, जो कहा था ना 2 बार मैं वापस आई शरीर में। तो दादी ने कहा भी हाँ, ऐसा लगा जैसे कुछ हलचल हुई है चेहरे पर, ये देखने के लिए कि शरीर में रहने की अवस्था कैसी और शरीर के बाहर की अवस्था कैसी, ये अनुभव करने के लिए बाबा ने मुझे भेजा। तो ट्वाइस दादी मम्मा वापस आई, ऐसा उसमें वर्णन है। तो मम्मा का महाप्रयाण 65। अब तक जो कल भी हम कह रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मम्मा है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मा की है। पर मम्मा जाने के बाद अभी बाबा के 2 पार्ट है। अब तक पिता का था, अभी माँ का भी है और बाप का भी है। तो 1965 से 66 तक, एक तो ब्रह्मा के 2 पार्ट, दूसरा बहुत सारे यज्ञवश से उन्हें एक नई, जैसे एक अपॉर्चुनिटी कहो या एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो गई कि ब्रह्मा से अधिक गहराई से कनेक्ट हो सके, और बाबा की अपनी जो त्याग, अपना जो त्याग था, तपस्या थी, अपना जो वैराग था, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल लाइफ में वो सब दिखाने के लिए बाबा की भी जैसे एक परीक्षा थी, एक पाठ अभी बजाना है कि जो डिटैचमेंट है, जो तपस्या की है इतने समय से, क्योंकि बाबा की अपनी एक जर्नी है प्योरिटी की, बाबा की भी एक प्योरिटी की जर्नी है, क्योंकि ये संसार की सबसे पहली आत्मा है जो परमात्मा समान बन रही है। अभी की जो वाणियां चलेगी वो अभी तक ब्रह्मा संपूर्ण नहीं बना है, उसकी सूक्ष्म सूक्ष्म प्यूरिटी की स्टेज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और 69 एक समय आएगा कि उसकी प्यूरिटी और परमात्मा की प्यूरिटी समान हो जाएगी और उसके बाद में परमात्मा अकेला धरती पर नहीं आएगा, वो और वो जो कुछ बोलेगा वो कंबाइंड होगा इन दोनों का। उसके बाद का जो मिलन होगा वो छह चीजों का मिलन होगा। एक तो परमात्मा शिव बाबा, दूसरा सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा का, तीसरा ब्रह्मा की आत्मा, चौथा गुलजार दादी का सूक्ष्म शरीर जो हमारे सामने दिख रहा है, आत्मा गुलजार दादी की, ये शिव बाबा, ब्रह्मा का सूक्ष्म शरीर, ब्रह्मा की आत्मा, गुलजार दादी का स्थूल शरीर, गुलजार दादी का सूक्ष्म शरीर, गुलजार दादी की आत्मा, ये छह सामने बैठेंगे अगले कई सालों तक। तो ये जो अवस्था है ब्रह्मा की, उसकी भी अपनी प्यूरिटी की एक यात्रा सूक्ष्म में अंदर से चालू है। ब्रह्मा अभी भी संपूर्ण नहीं बना है, वो बन रहा है धीरे धीरे धीरे, पर वो सारे लक्षण प्रकट हो रहे हैं, अचल अडोल अवस्थाएं प्रकट हो रही है उसकी। धीरे धीरे वो डिटैच होते जा रहा है, अब प्रभावित होते जा रहा है, क्योंकि अब परमात्मा और वो दोनों एक होकर बोलने वाले हैं, बाप और दादा। इतनी हाई स्टेज ऑफ प्यूरिटी अचीव होनी है तो उतनी गहरी था साधना। तो ये जो पीरियड था मम्मा का जाना, मम्मा की बाबा की जो त्याग और तपस्या है, उसका ये प्रैक्टिकल उदाहरण आगे होना। अगला 1966, निर्वेर भाई साहब मुंबई में थे और एक दूसरे धर्म की एक संस्था है वहाँ पर उन्होंने देखा सीढ़ी का चित्र। जैन धर्म में सीढ़ी के चित्र बहुत प्रयोग किए गए, यहाँ तक कि जो साइंस है उसमें भी सीढ़ी के चित्रों का प्रयोग किया गया है। क्या दिखाने के लिए कि मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, पहले इधर गाय बिल्ली, आगे आगे बढ़ते बढ़ते एक एक सीढ़ी में दिखाया, फिर मनुष्य, ये साइंस के चित्र है। या डार्विन्स थियोरी में भी सीढ़ी का प्रयोग किया गया, या फिर जैन धर्म के जो चित्र है सारे अलग अलग लोक, उसमें सीढ़ी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया। तो निर्मल भाई साहब ने शायद कहीं कौन सी संस्था है पता नहीं, पर किसी संस्था में देखा दूसरे धर्म की कि वहाँ पर सीढ़ी के रूप में दिखाया गया है डिज़ाइन में। तो बाबा को आकर बताया कि हमारा ये जो सृष्टि चक्र है, अभी तक हमारे पास तीन चित्र है, मम्मा जब तक थी झाड़ गोला त्रिमूर्ति, और जो चित्र थे मम्मा का चित्र बाबा का चित्र या तो तीन लोक का चित्र, ये चित्र आ चुके थे, पर मम्मा जा चुकी है अभी 65 में, उसके बाद में 66 में एक चित्र अभी भी आया नहीं है, वो है सीढ़ी का चित्र। तो निर्भर भाई साहब ने बाबा को बताया और बाबा को ये आइडिया बहुत अच्छी लगी, और बाबा ने फिर बुलाया विश्वरतन भाऊ दादा को और उनको कहा कि ऐसा एक चित्र बनाओ। तो उन्होंने बनाना चालू किया, आर्टिस्ट है, चित्र बनाना चालू किया, सतयुग बनाया, त्रेता बनाया, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग भी जोड़ दिया, और फिर उसमें लिखा इतने जन्म इतने जन्म इतने जन्म, सब कुछ एडिशन करेक्शन होते गए होते गए होते गए, और फिर वो फाइनल सीढ़ी का चित्र बना। और जितने भी चित्र बनते थे आफ्टर द एक्सप्रेस ओपिनियन ऑफ ब्रह्मा, ऐसा शब्द लिखा गया है कि सारे करेक्शन करते 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 जब फाइनल हो जाता था तो बाबा कहते थे फिर दिस इज परफेक्ट। और वो जो चित्र था उस समय का थोड़ा अलग था, सीढ़ी का अभी जो चित्र है हमारे पास वो थोड़ा सा अलग है। तो ये जो चित्र बना, ये वाला वो चित्र है, इसमें ब्रह्मा खड़ा हुआ दिखा हुआ है, ये भारत ऐसा दिखाया हुआ है, पुराना चित्र है, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन होता गया, इसमें राम राज्य हेवन वो सब भी दिखाया गया है। तो ये पुराना चित्र है सीढ़ी का, फिर इसमें मॉडिफिकेशन होते गए। तो वो चित्र बना, कब बना, 66 में। उसके बाद में जून 1967 सभी सीनियर्स की यहाँ मीटिंग हुई मधुबन में, जून 1967 में मम्मा को याद कर रहे हैं सभी कि मम्मा ने क्या पार्ट था मम्मा का, और मम्मा ने जो जो सेवाएं की या चालू की, यहाँ वहाँ जाना टूर करना, तो ये अभी कैसे होगा। बाबा ने कहा मम्मा का कोई रिप्लेसमेंट तो है नहीं, इम्पॉसिबल, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता उसको जो उसने किया। परंतु बाबा ने कुछ सीनियर बहनों को फिर जैसे अपॉइंट किया और उनको वो सारा काम दिया जो मम्मा करती थी। यहाँ वहाँ जाना, सेंटर्स देखना, संभालना, टूर करना, प्रदर्शनी में और कुछ करेक्शंस करना, बहनों को संभालना वगैरह वगैरह। ऐसी एक मीटिंग हुई इन जून 67 में। फिर आते हैं 68 में, जो हम पहले भी देख चुके हैं, 12 मार्च क्या हुआ, भाऊ ने शरीर छोड़ा। एक चित्र है जिसमें लिखा है 8 मार्च, जो तीनों का, रमेश भाई, भाऊ और बाबा, उसमें लिखा है 8 मार्च। परंतु 8 मार्च में अगर वो लोग यहाँ थे और ऑपरेशन के छठवें दिन शरीर छोड़ा है, तो शायद ये जो डेट लिखी गई 8 वाली, ये गलत है फिर, क्योंकि डेथ वाली डेट में तो कोई संदिग्धता नहीं है, वो तो करेक्ट डेट है। और ऑपरेशन अगर 8 मार्च को यहाँ थे, मतलब 9 मार्च को मुंबई पहुँचे, ठीक है, और ऑपरेशन के 5वें दिन तक वहाँ थे, और उन्होंने कहा था कि मैं ऑपरेशन होते होते ही शरीर छोड़ दूँ, ऐसी इच्छा थी, पर वैसा नहीं हुआ, नहीं तो डॉक्टर पर आ गया होता। इसलिए 6वें दिन, तो शायद ये जो डेट, फोटो वाली जो डेट है, वो शायद, क्योंकि उस समय डेट्स का किसी को कोई ख्याल नहीं था, डेट तो सब बाद में लिखी गई है, कौन सी डेट, कब डेट, क्या डेट, किसको क्या लेना देना डेट से, इतना कुछ नहीं था शायद। तो वो फोटो वाली जो डेट है, जो चित्र के नीचे लिखी गई है 8 मार्च, शायद वो पहले होगी थोड़ी। तो 68 में क्या हुआ, भाऊ ने शरीर छोड़ा। तो बाबा के जीवन की ये तीन मुख्य घटनाएं हिलाने वाली, सबसे पहली 61 यशोदा, 65 मम्मा, और 68 भाऊ। ये तीनों ही व्यक्ति बाबा के जीवन में बहुत लंबा समय रहे हैं। और कल हमने देखा कुछ बातें, ग्रीफ रिएक्शन, स्वजनों की मृत्यु कैसे हिला देती है, उसमें अचल अड़ोल अवस्था किसी एक विरले ही व्यक्ति के रहती है, जो बिल्कुल अचल अड़ोल, पिता ने शरीर छोड़ दिया, भाई ने, बहन ने, माँ ने, बड़े बड़े हिल जाते, एक ही तो भाई था, एक ही तो माँ होती है, एक ही तो बाप है, उसमें तीनों ही अवस्थाओं में कैसे थे, अचल अड़ोल, क्योंकि मृत्यु हिला देती है स्वजनों की, अपनों की, किसी की भी हो, कई बार अनरिलेटेड लोगों की मृत्यु भी देखकर आंसू आ जाते। तो ये घटनाएं थी, 60 की घटना हमने एक देखी, 65, 66, 67, 68, 69, 18 जनवरी तक। तो ये सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारे भाई बहनें यहाँ आए, अगर उन सब के अनुभव पढ़े जाए और चिंतन किया जाए, तो बहुत सारी बातें पता चलती है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। कोई कहते हैं हम जब पहली बार आए तो ब्रिज कोटी में मिले, कोई कहते हैं हम कोटा हाउस में मिले, कोई कहते हैं हम जब पहली बार आए तो पांडव भवन में आए, ऐसा था, वैसा था, हर एक के भिन्न भिन्न असंख्य अनुभव है, छोटे छोटे बच्चों के अनुभव है, बच्चे मतलब जो अभी बड़े हो गए हैं, उन्होंने कहा हम जब छोटे थे तो कैसे यहाँ पर आए, और हम लोगों की ग्रुप था, ग्रुप था, फिर बाबा ने हमको कहा जाओ जरा घूम के आओ, तो हम लोग घूमने निकले, फिर बहुत तेज बारिश हो गई, हम लोग पूरा भीग गए, और फिर डर डर के पांडव भवन में आए, वगैरह वगैरह, कई लोगों के अलग अलग अनुभव, तो बाबा ने डांटा नहीं। लोकल लोगों के कितने अनुभव, हमारे ओपीडी में लोग आते हैं, एक सिस्टर है यहाँ पर, एक सिस्टर है चर्च में, सिस्टर स्कूल में, वो बहुत बहुत मतलब वो 90 के अबव उसकी उम्र है, अभी कहीं और अजमेर चले गए, वो कहते थे तुम्हारी मम्मा शी वॉज माई फ्रेंड। क्रिश्चियन सिस्टर है और बहुत जॉली है, एकदम छोटी सी पतली पतली सी, वो कहती अभी तो शायद पता नहीं है या नहीं है, पर वो आती थी कई समय तक। फिर यहाँ के जो लोग हैं दुकानदार पुराने पुराने, वो कहते थे आपके बाबा हमारे पास से ये खरीद के लेके जाते थे। फिर कुछ लोग हैं वो यहाँ के कुछ डॉक्टर्स, वो कहते थे आपके डॉक्टर बाबा को हमने एग्जामिन किया था, क्योंकि माउंट में ऐसे कितने लोग हैं जिनका जन्म ही माउंट में हुआ है और तब से पीढ़ी दर पीढ़ी माउंट आबू में रह रहे हैं, तो वो सारे कई सारे लोग हैं जिन्होंने ये सब देखा हुआ है, उनको सब पता है यहाँ क्या था पहले, 40s में वो लोग माउंट में आ गए, तो उन्होंने पूरा यज्ञ को बड़ा होते हुए देखा है, एक एक चीज उनको पता है, वो कहते हैं हम सबको जानते हैं आपके, हमने काम किया है, हमने पांडव भवन के कंस्ट्रक्शन में काम किया है, हॉस्पिटल यहाँ पहले था ही नहीं, यहाँ जमीन थी, ये हमने देखा है, हमने यहाँ भी काम किया, यहाँ के मिस्त्री, ऐसे बहुत पुराने पुराने लोग हैं माउंट के। तो ये सारी घटनाएं, तो हम चर्चा करते कर रहे थे विघ्नों की, विघ्नों से क्या क्या फायदे, 7 फायदे। जब विघ्न आते हैं तब हमें पता चलता है हम कितने पानी में, ये है सबसे पहला फायदा। तब हमें पता चलता है हम है कौन। जो डिंगे मारते हैं मैं योगी हूँ, तपस्वी हूँ और ज्ञानी हूँ और अचल हूँ और तितुप्रज्ञ योगी हूँ, वो तब पता चलता है जब विघ्न आते हैं कि हम वास्तव में क्या है, कौन है, ये तभी पता चलता है। जब विघ्न आएंगे तभी पता चलेगा कि हु यू आर, ये सबसे पहला फायदा है विघ्नों का। दूसरा, ये विघ्न जो आएंगे यही हमारे जो कर्म है, ये एक्शंस है, उनको दिशा देंगे। तो विघ्न किस लिए आते हैं, हमें नई दिशा देने के लिए, नहीं तो हमें दिशा मिलेगी ही नहीं। हमारे जीवन को नई दिशा देते हैं विघ्न। और जो कहे कि मेरे जीवन में विघ्न ही नहीं आए, ऐसा वरदान यदि भगवान से उसे मिल जाए तो वो जहाँ था वहीं रह जाएगा। किसी का भी इतिहास देखो, किसी का भी, जो जो सम्राट बनाए, अशोक, चंद्रगुप्त, पृथ्वीराज, भारत के सम्राट, विदेश के सम्राट, जो भी है, सभी को क्या करना पड़ा, विघ्नों को पार करना पड़ा, बहुत भयंकर विघ्नों को पार करना पड़ा, तभी उस पद तक पहुंचे वो। तो विघ्न क्या करता है, हमें नई दिशा देता है। दूसरा, किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, द थिंग्स विच हर्ट इंस्ट्रक्ट्स, जो हर्ट करता है वो इंस्ट्रक्ट करता है। बहुत दर्द होता है जब कोई हर्ट करता है तो, और हर्ट बाबा को भी बहुत किया है, केवल बाहर वालों ने नहीं, क्योंकि कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने वाले कुछ भी कहते हैं, किसी के मुंह में सेलोटेप, डायनाप्लास्ट या पट्टी तो नहीं चिपका सकते ना, हर एक स्वतंत्र है, कुछ भी कोई भी बोल सकता है। तीसरा, हर विघ्न हमें मजबूत बनाता है, टफ बनाता है, नहीं तो हम कैसे रह जाते, कमजोर। किसी ने कुछ बोल दिया, गिर गए छुई में, किसी ने कुछ कह दिया, गए। भक्त आए संतोषी माता के मंदिर में, पर्दा खुला, संतोषी माता आंसू बहा रही, क्यों, क्योंकि दुर्गा माँ ने कहा कि तुम खाती बहुत हो, बस उदास हो गई। जब कोई व्यक्ति हर्ट करता है तो क्या क्या होता है, एक तो डिप्रेशन में चले जाते हैं सीधा, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा, किसी से बात करने की इच्छा खत्म, सो जाते हैं एकांत में, या तो बाबा से बातें करेंगे, मैं इतना बुरा हूँ, या उसने जो कहा वो सत्य मान लेते हैं, और ऐसा भी सोचते हो इसने कहा मतलब सभी लोग ऐसा मानते हैं, या फिर जिसने कहा उससे डर बैठ जाता है उसके प्रति, ये सारी चीज़ें हो जाती है। ये निगेटिव, पॉजिटिव भी चीज़ें हो सकती है, उसका धन्यवाद, उसने रिमाइंड करा दिया कि हम यहाँ कमज़ोर थे तो टफ बनेंगे अब वहाँ पर, और उसने चाहे कुछ भी कहा हो, 1% तो सत्य ज़रूर है, 99% झूठ कहा होगा, पर 1% ट्रुथ तो है। तो ये तीसरी बात क्या करती है, हर विघ्न हमें मजबूत बना देता है। चौथा, जो हमारे जीवन में मिसिंग था उस पर हमें फोकस कर देता है, जो हमारे जीवन की कमी थी अब तक वो उस पर ध्यान नहीं था हमारा, हम चल रहे थे ऐसे ही, पर उसने आकर, उस विघ्न ने आकर, व्यक्ति नहीं हो सकता है वो, जरूरी नहीं व्यक्ति है, कोई भी विघ्न, अचानक सारे पैसे खत्म हो गए, कुछ भी नहीं रहे, और कहीं बहुत अर्जेंट काम है पैसों का, फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल, ये भी एक विघ्न है, या फिर घर मालिक आकर कह दे कि एक हफ्ते के अंदर घर खाली कर दो, कहाँ जाएंगे। अगला, हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको क्या करता है, वो जागृत करता है, वो एक क्रिएटिव फोर्स है, हम नया कुछ कर सकते हैं, परंतु वो दबा रहता है, जागृत करता है। और छठवा, जीवन में एक नया अर्थ हमें दिखाई देता है, जैसे अब्राहम लिंकन के लिए कहा जाता है, उसका बीच का जो जीवन था, पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस था, डिप्रेशन था, पत्नी ने शरीर छोड़ दिया, ये हो गया वो हो गया बहुत, पर वही समय था कि अमेरिका को युद्ध करना था, उस समय सिविल वॉर हो रहा था, एक तरफ पर्सनल साइकोलॉजिकल इश्यूज, परंतु फिर भी एज अ प्रेसिडेंट उसने वो युद्ध करते रहा और जीता भी। तो जीवन में पर्सनल व्यक्तिगत विघ्न रहेंगे, डिस्टर्बेंस, पर यज्ञ सेवा चालू रहे, ये नहीं कि मेरे अंदर डिप्रेशन है इसलिए मैं ये नहीं करूँगा, वो उसके जीवन में चल ही रहा था अंदर से, पर वो सोचता था ये मेरा व्यक्तिगत है, इससे देश के लिए हानि, देश की हानि क्यों हो, पत्नी ने शरीर छोड़ दिया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, कितनी सारी चीजें हो गई उसके जीवन में, अंदर डिप्रेशन कंटिन्यूअस, परंतु बाहर लीडरशिप। तो विघ्न हमें नया अर्थ देते हैं, नया मीनिंग। और लास्ट हमारी जो कैपेसिटीज है हमें बताता है कि हम कितने कैपेबल है, हम कितना तेज भाग सकते हैं। ये कब पता चलता है? जब जंगल में हमारे पीछे शेर पड़ जाए तब पता चलता है कि हम कितना तेज भाग सकते हैं, नहीं तो क्यों भागेगा कोई। जब जीवन मृत्यु का प्रश्न है, एक क्रिश्चियन व्यक्ति जंगल में भटक जाता है और उसे एक भालू मिलता है, वो क्रिश्चियन है और भक्त है भगवान का, कहता है भालू सामने है, वो कहता है हे प्रभु इस भालू को क्रिश्चियन बना दे, तथास्तु। खुश हो जाता है, देखता है भालू प्रार्थना कर रहा है, फिर क्योंकि क्रिश्चियन बन गया है ना, भक्त बन गया है, क्या प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु ब्लेस माय फूड, मेरे भोजन को स्वीकार करो या भोग स्वीकार करो या वरदान दो अपना। तो हम कितना तेज दौड़ सकते हैं कब पता चलता है? जब शेर भालू पड़ जाता है तब पता चलता है कैसे तेज भाग सकते हैं, नहीं तो क्यों भागेगा कोई। जो लोग कहते हैं हमसे चलना नहीं होता है, घुटने में दर्द है, भूकंप आने जो आने दो, सबके घुटने सब ठीक, भागेंगे दौड़ के। तो ये सात चीजें हैं, क्या क्या बताई? पहला, विघ्न क्या करता है? हमको पता करता है कि हम कितने पानी में हैं। दूसरा, नई दिशा देता है हमको। तीसरा, हमें मजबूत बनाता है। चौथा, हमें फोकस कराता है अपने कमजोरी की तरफ। अगला, क्रिएटिविटी, हमारे अंदर क्रिएटिव पावर जागृत हो जाती है। तीसरा, छठवां, नया जीवन का नया अर्थ पता चलता है। और लास्ट, हमें अपनी कैपेसिटीज का पता चलता है। तो ये सात बातें हैं, अभी सात शॉर्ट में देखते हैं कि विघ्नों को कैसे जीते। सबसे पहले विघ्न क्या है इसको डिफाइन करो, कौन सा विघ्न है यही पता नहीं है। विघ्न है क्या, उसकी परिभाषा क्या है? हम सोच रहे विघ्न है विघ्न है विघ्न है, अरे क्या विघ्न है, किससे डर लगता है, वो डर विघ्न है, उसको लिखो। लिखने से पता चलता है कि ये विघ्न है। रोज उठ नहीं पा रहे अमृत वेला, तो लिखो उसको, मैं उठ नहीं पा रहा हूं। क्या मुझे अमृत वेले का मतलब पता नहीं, क्या मुझे अमृत वेले का महत्व पता नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहला क्या करना है, डिफाइन करना है विघ्न को। दूसरा, विघ्न की टाइमलाइन डिसाइड करनी है, कब से चल रहा है ये विघ्न, 2010 से, 2015 से, 2020 से, ये अभी अभी आया है, अब तक तो ठीक चल रहा था। विघ्न की टाइमलाइन क्या है, इतिहास, टाइमलाइन अर्थात कालखंड, काल उसकी कब से चल रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है, तो हम कुछ प्लानिंग कर सके उसके बारे में, ये है दूसरा। तीसरा है, इंग्लिश में कहते हैं डिटरमाइन व्हाट इज बियॉन्ड यू, मैं क्या क्या कर सकता हूं इस विघ्न के विषय में। विघ्न है, मेरे पास क्या क्या साधन है, क्यों नहीं उठ पा रहा हूं, शायद लेट सो रहा हूं, क्या कर सकता हूं, जल्दी सोने की कोशिश। क्यों नहीं सो पा रहा हूं, क्यों नहीं उठ पा रहा हूं, क्योंकि शायद मीडिया में ज्यादा समय हूं, सोशल मीडिया, उसको कम करके देखता हूं, मेरे पास समय नहीं है, क्यों समय नहीं है, कहां वेस्ट हो रहा है टाइम, मैं क्या क्या कर सकता हूं इस विघ्न के लिए, जो समय इस समय विघ्न आ रहा है, इसकी एक लिस्ट बनानी है। अगला, जो गोल है मेरा उसके टुकड़े टुकड़े कर देना है, क्या करना है, गोल के टुकड़े टुकड़े कर देना है, एक धक से गोल अचीव नहीं होता है, कोई कहे मैं कल से बिल्कुल सॉलिड फूड वैकेशन, ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, कुछ भी करने जाओ, चाहे भोजन, चाहे अमृत वेला, चाहे ब्रह्मचर्य। ब्रह्मा को प्यूरिटी की स्टेज अचीव करने को 33 ईयर्स लगे, थोड़ा थोड़ा निकलता गया कचरा कचरा, थोड़ा 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 इम्प्यूरिटी निकलती गई और लास्ट स्टेज अब अचीव हुई। इसलिए अव्यक्त वाणियों में कोई एडिटिंग नहीं है, जैसी है वैसी की वैसी है, पर साकार मुरली है उसमें, क्योंकि ब्रह्मा भी अपनी स्टेज को अचीव कर रहा है, उसमें ब्रह्मा के भी बहुत सारे पहले शब्द थे, अनुभव थे बहुत सारे, पर यहां पर भी अव्यक्त वाणियों में भी अनुभव है, परंतु अनएडिटेड, सामने जैसे कि वैसे रिकॉर्ड हो रहे हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता कि हमने तो ये सुना था, आपने ये लिखा, कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि सब सुन रहे हैं और जैसा सुना है वैसे के वैसे लिखे गए, इसलिए अव्यक्त वाणियां एकदम परफेक्ट है, पर साकार जो है वो थोड़ा सा उसमें, क्योंकि समय अनुसार जरूरी है वो, क्योंकि अभी के लोग इतने मजबूत नहीं है जो आ रहे हैं, वो दादिया थी, वो सब सुन लेती, सब कुछ उनमें पचाने की ताकत थी। अभी के सामने अगर वो शब्द बोल दिए तो कल से क्लास में आना बंद। काम विकार के बारे में कड़े कड़े शब्द थे, वो सब हटा दिए। अभी के लोग सुनेंगे तो उसको लगेगा तो मैं किस मुंह से जाऊं सेंटर पर, खत्म। तो गोल को अचीव करने के लिए क्या करना है, उसका टुकड़े टुकड़े करना है, थोड़ा थोड़ा, पार्ट पार्ट में। इतना कर लिया, अभी आगे कल और करूंगा, पीस पीस, इंस्टॉलमेंट, किश्तों में। अगला, एक प्लान बनाना है, एक्टिव। जहां पहुंचना है उसका क्या चाहिए, एक ढांचा, एक प्लान चाहिए, ब्लूप्रिंट, एक ठोस प्लान चाहिए कि ये करना है। जैसे इंजीनियर के पास क्या होता है, प्लान होता है, उसी अनुसार। आप ये नहीं कह सकते ये दीवार इधर नहीं इधर बना दो, टाइम पे नहीं बता सकते आप उसको, पहले से ही फिक्स है उसका। तो एक्टिव प्लान, उसके बाद में हमारी जो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उसको इम्प्रूव करना है। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, कभी इसको लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कौन कौन से स्किल्स है इसमें, कैसे कैसे, किस किस रीति से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। क्योंकि हम, हमारे पास एक स्किल पता है कि ये व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है, हम एक सोच रहे उसको सकाश दे रहे, ये दे रहे, बस ये एक ही मेथड पता है। पर अलग अलग मेथड से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की वो डेवलप करनी है। और लास्ट, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करनी है, अर्थात एनालिसिस करना है। एक हफ्ता मैंने करके देखा, संडे को बैठ के देखो, फिर 6 दिन में क्या प्रोग्रेस हुई, एनालिसिस, विश्लेषण करना है आपका कि ये 6 दिन मैंने पुरुषार्थ करके देखा, ये परिणाम है। तो ऐसी ये 7 विधियां है। पहली बताई, वो जो विघ्न है वो क्या है, वो क्लियर ही नहीं है, कंफ्यूजन है, बस है, कुछ तो है, विघ्न है, क्या है पता नहीं, तो लिखो उसको, पहला। दूसरा, उसका टाइमलाइन कब से चल रहा है ये। या बच, कई कहते हैं ना, कई पेशेंट आते हैं, क्या तकलीफ है, सिर दर्द, कब से, बचपन से, बचपन से क्या, जब पालने में थे तब से आधे से आधे लोग ऐसे ही बताते, कब से है ये तो बहुत पहले से यहां दर्द होता है, कब से, 20 साल पहले यहां नारियल गिरा था तब से दर्द चालू, ऐसे कंप्लेन लेके आते तो टाइमलाइन। तीसरा, उसको क्या करना है, मैं क्या क्या कर सकता हूं इसके लिए। अगर एक ये भी जोड़ सकते हैं, फिर किसी और से भी पूछो कि आपने क्या किया था जब ऐसा आपके साथ हुआ था, क्योंकि हर एक के पास अनुभव है, सारे कुमारों के पास सब अनुभव है। कुमार बहुत पावरफुल लोग होते हैं, एकदम पावरफुल, अगर ठान ले ब्रह्मचर्य तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, हिलेंगे नहीं। ठान ले अगर ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ना है, ज्ञान में चलना है, ठान ले शादी करनी ही नहीं है तो सारी दुनिया एक तरफ, वो एक तरफ। पर कुमार में पावर इतनी भी, अगर ठान ले शादी करनी है तो सारा ब्राह्मण परिवार एक तरफ क्योंकि पावर कुमार है आखिर, ऐसे वैसे थोड़ी ना लिंबू टिंबू, अगर ठान ले तो पूरा भगवान भी उतर के आ जाए धरती पर, ब्रह्मा आ जाए, भगवान आ जाए और सारा ब्राह्मण परिवार विद तारी दादी आ जाए, तो भी हम करके रहेंगे, दृढ़ संकल्प। एक पति अपनी पत्नी से कहता है, आज शाम को मेरा दोस्त खाने के लिए आ रहा है, भोजन के लिए बुलाया। वो पत्नी कहती, भोजन के लिए, चावल नहीं है, दाल नहीं है, आटा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चों को ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये भी नहीं, किसी को भी कभी भी बुला लेते हो। वो कहता है, वो शादी करने वाला, इसलिए तो दिखाने बुला रहा हूं, ये होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, गोल गोल के टुकड़े टुकड़े कर। अगला, एक प्लान बनाना है, प्रॉपर एक्टिव प्लान। अगला, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करना है। और लास्ट, ये जो भी है उसको ट्रैक करना है। ये सफर बहुत है कठिन मगर, ना उदास हो मेरे हम सफर, ये सफर बहुत है कठिन मगर, ना उदास हो मेरे हम सफर, ये सितम की रात है ढलने को, ये अंधेरा गम का पिघलने को, जरा देर इसमें लगे अगर, ना उदास हो मेरे हम सफर, रहने वाली ये मुश्किलें, ये है अगले मोड़ पे मंजिले, मेरी बात का तू यकीन कर, ना उदास हो मेरे हमसर, कहीं ढूंढ लेगा ये कारवा, वो नई जमीन, नया आसमान, जिसे ढूंढती है तेरी नजर, ना उदास हो मेरे हमसफर। ओम शांति। No.
ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर न उदास हो मेरे हम सफर ये सितम की रात है ढलने को है अंधेरा हम कभी ढलने को ये सितम की रात है ढलने को है अंधेरा हम कभी ढलने को जरा देर इसमें लगे अगर जरा देर इसमें लगे अगर न उदास हो मेरे हम सफर ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर उदास हो मेरे हम सफर